अगले एहतराम दोस्तों, होते भी फीन गए, ना उम्र नौजवान भी है, उम्र सीधा बुजुर्ग भी है, अच्छी खासी तादाद में है। आपके जोर को शौक को मजबूरियत को देख कर जी बहुत खुश होता है। अल्लाह रब العالمین आपके मौला को राजी करने के लिए रमजान जैसे महीने में इस वक्त के कार्य करने को हम सबके कबूल करवाए और जो बरकत को अल्लाह इस मुबारक महीने में अपने मखसूस बंदों को अता करते हैं, हमारे किसी इस्तेखार के बगैर अपने कर्म से हम सबको अता करते हैं। जो अहकाम पुराने पाक में आए हैं उनमें से एक हुक्म अल्लाह के जिक्र रूह की रूह है, रूह जिस्म की हयात का जरिया है, रूह की हयात अल्लाह के सिद्ध से है। सबसे बड़ी चीज है अल्लाह का अल्लाह पाक को मानते हैं पुराने पाक में अल्लाह का जिक्र करने वाले कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले औरतें बहुत सिफात वाले लोग हैं जिनके वास्ते अल्लाह ने मग़फ़िरत को और अजर अजीम को तैयार कर अल्लाह पाक का हुक्म है आइयों लदीना मनो अल्लाह जिक्र कसीरा वसल बिहो हुदरतों असीला इरमाय आलम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो और अल्लाह की पाक की सुबह शाम तैयार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे जिंदा हो और जिक्र नहीं करने वाला ऐसा जैसे मुर्दा हो। असल नजी इसको रखो वो बंद करके इसको कमा सरीर है ये और जाइए अल्लाह का जिक्र करने वाला और अल्लाह का जिक्र नहीं करने वाला ये दोनों ऐसे हैं जैसे जिंदा और मुर्दा। अभी आप अल्लाह का सुना कि जिक्र रूह की भी रूह है, अल्लाह को जिक्र नहीं कर रहे हैं, अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं, अपने को तो जिंदे दिखाई देते हैं, अपने को तो जिंदे दिखाई देते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिस शख्स अल्लाह की याद से गाफिल है वो मुर्दे की तरह है। हालांकि उसके जिस्म में जान मौजूद है मगर उस जान की जो जान है उसे हासिल नहीं, इसलिए जिक्र को जिक्र की बहुत तफसीलात है, बहुत किस्में है, ये वक्त जिक्र करने का मुतय्यन किए गए हमारे यहाँ के निजाम के मामूलात को तरतीब देने में ये वक्त को इसके लिए मुतय्यन किए गए। इसके लिए मुतय्यन किए जाने की मसलहतों में एक मसलहत ये भी है कि ये वक्त दरमियाना वक्त है हमारे रोजा बेहतर मामूल है, इतनी अच्छी तरतीब है कि आप मेरे बारे में सही कर सुबह दूरी दूरी मसाइल वालों सुबह में अल्लाह की याद में अपने आप को लगा फिर उसके बाद दुआ का नंबर है तो इंशाल्लाह दोहरे वाले फिर दुआ होगी इसमें अल्लाह के नाम पढ़े जाएंगे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलात और सलाम की जो अल्फाज अहादीस में आए हैं वो सुनाए जाएंगे फिर उसके बाद में दुआ होगी। एक तरतीब है इस काम इसमें आप इसको जहन में रखें। ये जो जिक्र है ये अमूमी जिक्र है जिसको कहते हैं जिक्र दुरूद शरीफ है, सुबह करीमा है, इससे उपराम है और जौक से शौक से दुरूद शरीफ पढ़ जबरदस्ती नहीं सही तरफ से पढ़ना तेज तेज नहीं तवज्जो से पढ़ना, कसरत से नहीं, शौक से पढ़ना, बोझ समझ के नहीं। अब यहाँ सब गुरु शरीर का जिक्र करते बैठे हुए, मैं अकेला नहीं, मैं ही पढ़ा रहे हूँ, तो समझ में आ जाएगा लोगों को, क्या बोलेंगे लोग, सुनोगे पढ़ो, ये जबरदस्ती का नहीं सौदा, शौक से करो। तो दुरूद शरीफ शौक से पढ़ो, जितना ज्यादा अकीदत से, एहतराम से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को याद करते हुए आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उसी एतबार से उसकी बरकत है। वाज़े बुजुर्गों ने फरमाया है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनमें से बाज़ों का दुरूद ऐसा होता है जैसे कि एक ताज़ा खिला हो, गुलाम हो, जो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जा रहा हो, शौक से, शौक से, सही तलफ्फुज़ से, अज़मत से, एहतराम से नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात को याद करते हुए पढ़ता है। और जो ज्यादा जो इतनी ज्यादा दिलचस्पी से नहीं पढ़ता तो ऐसा है जैसा कि भूल मुरझा जा रहा है, ये कर रहा है। और बात बात तो ऐसे होते हैं कि ऐसे पेश करते हैं कि उसकी पत्तियां पत्तियां अलग अलग करती है। इतना बेहतर अंदाज पेश कर सकते हैं अल्फाज सीख रहे हैं। दुरूद शरीफ मुख्तलिफ है, दुरूद इब्राहिम अफजल तरीन दुरूद जो नमाजों में कहा जाता है, इसके अलावा मुख्तलिफ दुरूद है। जैसे अपने सिलसिले में बुजुर्ग है, एक दुरूद है, आप समझोगे कि कुरान पाक में सल्लू का लफ्ज आया, सुमानाते सलात पे, दूसरे कुरान पाक में वसल्लिमो, सल्लू अलैहि वसल्लम, सलाम भेज, तो सलाम का लफ्ज भी अलग है। और दुरूद इब्राहिम जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया उसमें है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद, जिसमें बरकत का भी लफ्ज है। शायद इस सब को मरबूज रखते हुए हमारे सिलसिले के बुजुर्गों ने जो दुरूद शरीफ बताया वो ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी वअला आलिहि वअसहाबिहि वबारिक वसल्लि, सल्लि बारिक सल्लि, तीनों आ गया ना उसमें, ये दुरूद शरीफ का है पढ़ने का। ये बोले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, ये भी दुरूद शरीफ صلى الله على النبي الكريم بيبي دول، اللهم صل على محمد النبي الأمي بيبي دول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، مختلف الفاظ آئے ہیں جو آپ کے بعد پڑھی آنے والی دعا درود کی چھوٹی سی کتاب سے جو سنائے جائیں گے آپ حضرات کو غور سے سنتے ہوئے ہر درود شریف کے पढ़ने वाले के पढ़ने को खत्म करने पर आप आमीन बोलेंगे। समझ में आ रही बात, मिसाल के तौर पर किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ऐसा बोलेंगे। पढ़ने वाले से अपनी लंबी सांस बताने का नहीं है, दुरूद शरीफ खत्म पे रुक जाओ, आमीन कहने के साथियों को मौत खा, पढ़ने वाले जो साथी हमारे से पढ़ाए, इसलिए दुरूद तो एक पढ़ रहा है, अब वो दुरूद हम भी पढ़ लें, उसके लिए क्या करना है, आमीन बोलिए तो बराबर हो जाए, उसकी मेहनत से ज्यादा अपनी मेहनत कम है मगर सवाब पूरा अपने को बोलना। वो कह रहा है अल्लाह रहमत भेजिए, सलामती भेजिए, बरकत भेजिए, हम कह रहे आमीन, मतलब क्या हुआ कि हम भी वही चाह रहे हैं। ऐसी सूरत में पढ़ने वाला पढ़ा अपने को खाली आमीन बोले तो सब पर सवाल है। तो किस्म के नुस्खे होते हैं, मैदा नुस्खा है, सस्ता नुस्खा, अपन आम लोगों को सस्ते नुस्खे पे बेहतर मालूम होते हैं। दुरूद शरीफ ऐसे जौक से शौक से पढ़ो, दूसरे सुबह कहो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Lafı sayıyor. Emir adilim ve emzali doğru. Ezir ne adilim deme. İttah pır sakta hume. Eğer aysa pırna jese mırza pır ke bata rahe. Bu thoda onda. Aysa mat sorsana. Sahi tarafı se pır. Parbaz ki tazbih bu da dekhne mi milta hai. Bari hayret hoti hai. Kaisi kaisi zaman mein sarasat hai. Aur aisi kaisi tezi hai. Kitna idhar tazbih ka sira shuru hua. इधर तस्बीह का सिरा खत्म हो गया, बल्कि बार-बार से ऐसा दो हाथों में पकड़िए खाली खींचते रहता है। ये नहीं समझ में आता कि क्या कर रहा है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की बाकी बयान करो, अल्लाह की तारीफ करो, तो ऐसे अल्फाज के साथ और ऐसी सियाहत के साथ और ऐसे अच्छे अंदाज में करो कि परवरदिगार आलम को भी प्यार आ जाए कि देखो मेरा बंदा कितनी मोहब्बत से मुझे याद करता है। ऐसा कहना चाहिए सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। चाहे इतना पढ़े चाहे अल्लाह को अकबर तकबीर आ जा सके। बहुत पसंदीदा कलमे हैं अल्लाह। बुखारी शरीफ में आखिरी हदीस आमतौर पर लोग सुनते हैं, दो कलमे अल्लाह बहुत महबूब हैं, बहुत हल्के हैं अदा करने में, बहुत वजनी है तराजू में। सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम है ना। एक बूढ़ी खातून थी मदीने मुनव्वरा में, जिक्र करते बैठी थी नबी नमाज सुबह के बाद, सुबह की नमाज के बाद जिक्र करते बैठी नबी अलैहिस्सलाम देखा जाते हुए कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बुरी है अल्लाह का जिक्र करते बैठी है या किसी खातून के बारे में आता है। आप कई अपने कामों से फारिग होने के बाद बहुत देर के बाद वापस हुए, कई घंटे गुजर गए, तकरीबन डेढ़ दो घंटे गुजर गए थे, उसको देखा कि वैसे जिक्र करते बैठी है, क्या करते, बोले अल्लाह का जिक्र। अरे जब से अब तक जी, तो आपने उनका जो शौक था अल्लाह के जिक्र को कसरत से करने का, उसकी गोया पसंदीदगी का इजहार करते हुए उस ज़ईफ खातून के हालत के हिसाब से जिक्र बताया जी। और यूं फरमाया कि अगर तुम ये कलिमात कह लो सुभान अल्लाह बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, अगर तुमने ये अल्फाज कह दिए तो ये दो तीन मरतबा बोलना या एक मरतबा बोल दिए तो तुम दो घंटे से जितना जिक्र करे उसके बराबर उसके बस बढ़ के सवाब उसे मिले। ये कलिमात के लिए क्या माना है उसके, सुभान अल्लाह बिहम्दी अदद खल्क़िही, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ अल्लाह की तारीफ के साथ इतनी तादाद में जितनी अल्लाह की मखलूक है। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसा उसको बताया था, अब अल्लाह की जितनी मखलूक है उतनी मरतबा सुभान अल्लाह मैं कहता हूँ, उतनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वजीनत अर्शी, मैं अल्लाह की बाकी बयान करता हूँ अल्लाह की तारीफ के साथ उतनी मिकदार में जितना के अर्श का वजन है। मालूम है अर्श कैसा है, कुर्सी इस कदर वसी वाली है कि उसके मुकाबले में आसमान और जमीन ऐसे हैं जैसे छल्ला व जमीन के ऊपर, और वो अर्श के मुकाबले में ऐसे जैसे छल्ला वो जमीन के ऊपर। इतना भारी बोलो, आठ आठ फरिश्ते तो उसके पायों को थामे हुए, चार चार फरिश्ते हवाई में अर्श थामे हुए। रिदा नफ्सी, इतनी तादाद में मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ उसकी तारीफ के साथ कि जो परवरदिगार की खुशनूदी का सबब बन जाए, रिज़ा का बाइस। और इतनी तादाद में جتنے اللہ کی کلمات کے لکھنے کے واسطے روشنائی چاہیے اتنی مقدار وہ الفاظ ہیں اس کے. ذوق سے ذکر کرو سب کلمہ پڑھو, استغفار کرو, تیسرا ذکر ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما تب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, رب اغفر لی وارحمنی, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہم اغفر لی ذنوبی. غریب الفاظ ہے. ہر استغفار کے وقت میں اس کا خیال رکھنا, جیسے کسی آدمی سے بہت بڑا قصور ہو گیا ہو اور وہ کسی بڑے کے سامنے ہو اور وہ اس سے کہہ رہا ہو اس سے غلطی ہو گئی, مجھ سے قصور ہو گیا, مجھے معاف فرما دیجیے. ابھی ہم نے دیکھا سفر سے واپسی میں ایئرپورٹ میں ساری کاروائیاں ہو جانے کے بعد ہوائی جہاز میں چڑھنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ گیٹ کھلے گا تو جا کے بیٹھ جائیں گے. وہاں پر ہم نے دیکھا ایک نوجوان کو, وہ فون کر کے بات کر رہا, وہ اتنے دن آپ کے پاس میں رہا, کسی کو غلطیاں ہو گئی آپ معاف فرما دیجیے. نوجوان دیکھنے میں بھی کوئی دیندار سمجھ میں نہیں آ رہا, اور وہ جو قصور سے معافی مانگ رہا ہے وہ قصور بھی مانگنے کے حساب سے جیسا رہنا چاہیے ویسا نہیں رہ سکا, اس سلسلے معافی مانگ رہا, اور جس سے معافی مانگ رہا تھا وہ بھی اس کا کوئی تھوڑا بہت محسن خیر خواہ ہوگا جس نے اس کو بلایا ہوگا یا وہاں رکھا ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب وہ جس سے معافی مانگ رہا پتا نہیں کہاں ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے ایئرپورٹ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے, تھوڑا معاف کر دیجیے. پھر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ رولے تو بیٹھا ہوا ہے. انسان انسان سے معافی مانگتا ہے اپنے قصوروں کا اعتراف اس کے اندرون میں ہے تو اس کے اندر احساس شرمندگی کا یہ عالم. ایک بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے سراپا گناہ کا, سراپا قصور وار بندہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرتا ہے, اس کا نام استغفار ہے. جسے کہتے ہیں استغفار ذہن میں رکھنا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسا پڑھتے ہیں کہ سو مرتبہ کے باوجود ہمارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور اس سلسلے میں صبح میں بھی آپ نے بات سنی ہے مختصر سے, اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ میں استغفار سو سو دفعہ اس کا اہتمام کرے. ایک تو یہ وقت ہے آپ کے ذکر کے لیے, اور دوسرے اثر کے بعد میں سنتوں کا مذاکرہ کرنے کے بعد پھر موقع دیا جائے گا تو شام کی تسبیح اس موقع پر کر لیں. آج تو اتنا ہی, اس وقت میں آپ حضرات کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اب آپ ذکر میں آپ مشغول رہیے, باقی ذکر کی مزید چیزیں سلسلے کا ذکر اس میں آپ کس چیز کا ذکر کریں گے, کتنی مقدار میں کریں گے, کس شعور کے ساتھ میں کریں گے, تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے آتی رہے گی. اللہ جل شانہ اپنے ذاکر بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے, اور پورے آداب کے ساتھ ہم سب کو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اپنا اپنا انفرادی الگ الگ بیٹھ کے کرو, ہمارے ساتھی لائن سے بیٹھ جاؤ ذکر کر لو. گزشتہ کے آپ ہی ہوتے ہوئے نہیں ہیں,
உணர்ந்தவர்களா?